ஓம் சாந்தி. இஸ் தபஸ்யா பூமி மே பாண்டவ பவன் கி பூமி மே மௌன் தபஸ்யா பட்டி கே சுபாரம்ப மே ஹமாரே பீச் சப்கி அதி பிரிய மதுர வாணி சப்கா தில் ஜீத்தே வாலி சப்கோ பாபா கா சந்தேஷ் தேஷ் விதேஷ் மே விஸ்வ மே ஃபைலானே வாலே ஷிலு தீதி ஜி ஹமாரே பீச் ஹே. ஃபிர் சே ஹம் ஆப்கா பஹுத் ஹி தில் சே ஏக் ஹாத் கி தாலி சே ஸ்வாகத் கர்தே ஹே. ஸ்வாகத் ஹே, ஸ்வாகத் ஹே, ஸ்வாகத் ஹே. ஹமாரே ஸ்வாகத் மே பி தாலியோ கி ஆவாஸ் நஹி, இஷாரே சே பஹுத் ஹி தில் சே ஆப் சப்கா, ஆப் சப்னே தீதி ஜி கா ஸ்வாகத் கியா. ஐசே தோ ஆப்கோ சப் பஹ்சானதே ஹே. ஹமாரி பாஹ்ய ஜோ சேவாயே விஸ்வ மே ஷுரு ஹுயி டிவி கே மாத்யம் சே உஸ்மே பி ஷுருவாத் ஆப் சே ஹி ஹுயி தி. ஆப்கே அநேக் ஜ்ஞான் கே குஹ்ய ரத்னோ சே ஆப்னே சப்கோ பிரபாவித் கியா தா. ஆப் பச்பன் சே ஹி ஜ்ஞான் மே ஹோ, கரீப் 69 சே ஆப்னே இஸ் ஈஸ்வரிய சேவா மே ஆப்கா ஜீவன் சமர்ப்பித் கியா. ஆப்கா இங்கிலீஷ் பாஷா மே பஹுத் அச்சா கமாண்ட் ஹே. ஆப்னே ஷுரு சே ஹி பாபா கி இஸ் பாவனாவோ கோ, பாபா கி பி பாவனா தி கி பச்சி ஆகே ஜா கர்கே இங்கிலீஷ் மே பிரவச்சன் கர்கே சப்கோ சந்தேஷ் தேனே கே நிமித் பனேகி. ஷுருவாத் மே ஆப்னே அஃப்ரிக்கா மொரேஷியஸ் ஆதி சேவா கேந்திரோ மே, ஜப்கி விதேஷ் சேவாயே ஷுரு ஹுயி தி தோ ஆதி மே பஹுத் ஹி அச்சி சேவாயே கி, ஔர் பாத் மே பி ஆஜ் தக் ஆப் அப்னி விதேஷ் சேவாவோ கே லியே பி பஹுத் ஹி அதக் ஹோ கர்கே சப் தக் பாபா கி பாத்தே சந்தேஷ் பஹுச்சாத்தே ஹோ. காஸ் எஜுகேஷன் விங் கே ஆப் ஹெட் குவார்ட்டர் கோஆர்டினேட்டர் பி ஹோ. பாக்கி தோ சம்மேலன் மஹா சம்மேலன் ஔர் ஹமாரி யஹாம் ஜோ ஷிவிர் பட்டியா ட்ரேனிங் ஜோ பி சப் ஹோ ரஹே ஹை உஸ்மே ஆப்கா விசேஷ யோக்தான் ரஹதா ஹி ஹை. இஸ்லிய ஹர் ஆத்மா கோ ஆப்கே லியே பஹுத் மான் ஹை, கியோகி ஆப் ஜ்ஞான ரத்னோ கி கான் ஹோ ஔர் இஸ் மதுவன் பாண்டவ பவன் கி ஷான் ஹோ. ஃபிர் ஃபிர் சே ஆப்கா பி இஸ் பட்டி மே சபி பாய் பஹனோ கே பீச் ஸ்வாகத் ஹே, ஸ்வாகத் ஹே, ஸ்வாகத் ஹே. தோ அபி ஆப்கோ இஸ் பட்டி கா லக்ஷ் உத்தேஷ் சம்ஜாயேங்கே சுனாயேங்கே, ஜிஸ்கோ பஹுத் தியான் சே சுன்கர் யஹி லக்ஷ் லேகர் கே பட்டி கா சுபாரம்ப கரேங்கே.
आप भी अपना परिचय दो जो आपकी तीन दिन की यहाँ टीचर रहेगी, सभी बातों का ध्यान रखेगी कोऑर्डिनेटर के रूप में, वो अपना परिचय दे. तृप्ति बहन,
नाम तो दीदी जी ने सुनाया,
तृप्ति सबको तृप्त करने वाली
तृप्ति बहन है नाम. करीब हम भी 69 से ज्ञान तो प्राप्त हुआ था, फिर 75 से हमने बाबा की सेवा में ईश्वरीय सेवा में जीवन समर्पित किया. शुरू में उत्तर गुजरात में सेवाएं की और 25 साल से भावनगर सब जोन जो गुजरात में है वहां सेवा के लिए निमित्त है. बाबा ने हमें ये भी पांडव वन की भट्टी का भी हमें भी चांस दिया है, तो हम भी बाबा को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, साथ साथ भट्टी कराने वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं. ओम शांति.
ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. आप सबको ये खुशखबरी तो मिली होगी या पता नहीं, नहीं मिली है कि 7 बजे दादी जानकी जी यहाँ आएंगी. पता है ना, पता है दादी जानकी जी पांडव भवन में हैं, और शाम को 7 बजे आप सबसे मिलने के लिए मेडिटेशन हॉल में आएंगी। तो ये बहुत पहली खुशखबरी आपको सुनाते हैं। तो जब तक दादी आए तब तक आप सभी का बाबा के घर में प्यारे बाप दादा, सभी दादियां, सभी वरिष्ठ भाई, सर्व मधुबन निवासी भाई बहने, सबकी तरफ से और हमारी तरफ से भी आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हाँ, एक बार ताली भले बजाओ अजाने। आप जैसे ही मधुबन में आए, वैसे तो कई तो 2-3 दिन पहले पहुंच गए पांडव भवन में, कोई नीचे से भट्टी करके आए, लेकिन बहुत उमंग उत्साह से आप सब मधुबन में पधारे। तो इंतजार था कि कब से भट्टी शुरू होगी। वैसे ऑफिशियल डेट तो आज है, वो प्रोग्राम में तारीख 13 के बदले 12 लिख दी गई थी, पर नीचे बुधवार लिखा था, तो बुधवार तो आज है। तो काकीनाड़ा की तरफ से और बीदर की तरफ से जो भी भाई बहनें आए हैं बाबा के इस बेहद पावन भूमि में, तपो भूमि में, वरदान भूमि में, परिवर्तन भूमि में स्वागत तो हुआ, लेकिन यहाँ पर आप क्या अनुभव करेंगे? क्योंकि जो भी आत्माएं यहाँ आती है अवश्य कुछ न कुछ अनुभव करके जाती है, और आप तो यहाँ 3-4 दिन रहेंगे भी बाबा के इस बेहद घर में। और मैं समझती हूँ आप में से कई ऐसे भाई बहन होंगे जो पांडव भवन में पहली बार रह रहे हैं, क्योंकि शांतिवन में तो रहते ही होंगे, आते होंगे, या ज्ञान सरोवर में भी रहे होंगे, लेकिन पांडव भवन में मुश्किल से कोई रहते हैं। तो जो पहली बार पांडव भवन में रह रहे हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, ये तो सारे ही ऐसे हैं, सुना, पहली बार पांडव भवन में रह रहे हैं, और जो पहले भी रहे हुए पांडव भवन में वो हाथ उठाएं। अच्छा, थोड़े जो पुराने होंगे, क्योंकि पहले तो केवल पांडव भवन ही था, फिर 95 से ज्ञान सरोवर बना, 96 से शांतिवन हुआ, तो पर 95 से पहले जो भी आए हैं वो तो पांडव भवन में रहे होंगे। तो जैसे ही आप आए, आप सभी को एक क्या कहें, एक माला पहनाई गई, विजय माला कहो इसको, हम इसको विजय माला कहते हैं, विजय माला कहो, या एक ठप्पा लगाया गया बैज के रूप में जो आपके गले में डाला गया, और उस पर नाम क्या है पढ़ा आपने, क्या लिखा है बैज पर, क्या लिखा है? हाँ, ध्यान से पढ़ा, क्या लिखा है? संस्कार परिवर्तन मौन तपस्या। तो संस्कार परिवर्तन और उसके लिए मौन तपस्या, इस लक्ष्य को लेकर आप यहाँ यह भट्टी कर रहे हैं। क्योंकि मधुबन ऐसा स्थान है जहां पर हमें अपने अंदर में झांकने का समय मिलता है। आप अपने ग्रस्त जीवन में रहते हैं, व्यवहार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वहां अपने आप को झांक कर देखने का इतना समय शायद न भी मिलता हो, लेकिन पांडव भवन मधुबन में आकर के आपको बहुत समय मिलेगा आत्मनिरीक्षण करने के लिए, आत्मन संयम करने के लिए और पर उसके लिए आत्मचिंतन करने के लिए, क्योंकि ये सब नंबर वार है, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण, फिर आत्मसंयम, आत्मबोध, फिर आत्म परिवर्तन। तो परिवर्तन माना दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, स्थिति, हमारी भावनाएं, इन सब का परिवर्तन जो बाबा हमसे चाहते हैं। तो बाबा की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपको यहां मौका मिला है। हर मुरली में बाबा की बहुत सारी इच्छाएं बच्चों के प्रति होती है और उसके लिए बाबा श्रीमत भी देते रहते हैं हर मुरली में। तो श्रीमत पर हम कितना चल रहे हैं, कितना बाबा की आशाओं को पूर्ण कर रहे हैं, उसका आत्मनिरीक्षण करने का यहाँ मौका है। क्योंकि मोटे मोटे विकार तो चलो सब खत्म हो गए, अभी कहेंगे न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है, वो तो नहीं होगा ना, कि वो भी है थोड़ा थोड़ा, नहीं। अगर चलो मनसा में तूफान आता भी है पर वाचा और कर्मणा में तो नहीं लाते होंगे, परंतु मनसा में भी न आए, स्वप्न मात्र तक न आए, ये जरूर महान पुरुषार्थ है। पर कई बार छोटे छोटे जो बाल बच्चे हैं इन विकारों के, वो तो परेशान करते होंगे जरूर, कभी आवेश में आ जाना, कभी नफरत दिखाना, कभी कोई आकर्षण में आना, छोटी छोटी बातें, लेकिन फिर अपने को समझाते होंगे नहीं नहीं ये बाबा की श्रीमत नहीं है, तो फिर परिवर्तन करते होंगे। लेकिन इच्छा जरूर है कि ये सब परिवर्तन हो, परंतु वो शक्ति भरने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि कमियां भी बहुत होगी, खामियां भी है, कमजोरियां भी है, तो कमियां तो हमें भरनी है, जो कमी है उसको पूर्ण करना है, वो मार्जिन, वो गैप पूरा करना है, जो खामियां हैं वो निकालनी है, और कमजोरी की जगह शक्ति भरनी है। तो उसके लिए यह मौन तपस्या है। मौन में क्या सुख है, क्या आनंद है, वो आप यहां अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि कारोबार में तो मौन रखना मुश्किल है, लौकिक दुनिया में भी मौन रखना मुश्किल है, लेकिन यहां मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये सब कारोबार यहाँ है ही नहीं जो सांसारिक कारोबार है, परंतु उसके लिए केवल दृढ़ लक्ष्य चाहिए कि मुझे यहाँ 3 दिन एकदम मौन रहना है। अगर ये लक्ष्य होगा ना, तो लक्षण अपने आप आ ही जाएंगे। और मुख का मौन के लिए मन का मौन भी बहुत जरूरी है, अगर मन में भी हलचल होगी तो भी मुख का मौन मुश्किल है। तो मुख का मौन रखना है तो मन में भी कोई संकल्प नहीं आएंगे, अगर संकल्प आएंगे तो मुख से जरूर वो संकल्प प्रकट होंगे, वाणी में आएंगे। तो पहला लक्ष्य उसके लिए क्या रखना है कि 3 दिन मुझे बिल्कुल बोलना नहीं है। हो सकता है, हो सकता है, माताएं पहले बताए जो माताएं समझती हो सकता हाथ उठाए, बाबा हाथ उठवाते ना, बाबू भाई भी हाथ उठवाए, हाथ उठाए, हो सकता है। बाबा क्यों हाथ उठवाते हैं? आप देखते हैं ना मुरलियों में बाबा हाथ उठवाते हैं, दादियां भी हाथ उठवाती है, तो हाथ उठाने से याद आएगा कि मैंने बड़ी सभा में हाथ उठाया था और बहनों ने तो देखा ही था, लेकिन बाबा ने भी देखा वतन से कि बच्चों ने यह दृढ़ संकल्प किया है कि हम 3 दिन मौन रहेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो क्या करनी होगी, जिसके कारण आवाज भी होता है और बोलचाल भी होती है, वो है आपका मोबाइल। सबका मोबाइल स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है, हाँ है सभी का स्विच ऑफ, जिसका नहीं है अभी तक वो हाथ उठाए, भले उसमें भी हाथ उठाओ ना, इसमें क्या है, होगा। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में इन्फॉर्म नहीं करो, घर में सबने इन्फॉर्म कर दिया, आप बता दिया कि हम मधुबन पहुंच गए हैं और अभी हम मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे, 3 दिन आप लोग हमको कोई फोन नहीं करे, ये हो सकता है, हो सकता है कि आपको कोई फोन ना करे और आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, जरूर बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने घर में ये सूचना दे देना कि 3 दिन आज रात तक जितनी बात करनी हो कर लो अपने घर वालों से, लेकिन उनको कह दो अगले 3 दिन, आज 13 तारीख है, 14, 15, 16, ये 3 दिन मैंने मौन व्रत धारण किया है, इसलिए हमको कोई भी फोन नहीं करे। टीचर्स बहने खास याद दिलाए अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है टीचर्स बहने, खुद भी रहेंगी तो अभी तो याद दिलाएंगे ना, खुद भी रहेंगे। हमने तो हमारी ये रजनी बहन का तो बहुत अनुभव किया, मैं काकीनाड़ा गई थी, कितनी इनमें लगन है सच्ची, कितनी ऊंची धारणा है, काकीनाड़ा का अनुभव किया। बाकी अभी तक बिदर नहीं गई हूँ, काकीनाड़ा तो होकर आई हूँ, है ना। काकीनाड़ा में जिसने हमको देखा था हाथ उठाए, काकीनाड़ा गई हूँ ना मैम, अन्नावरम, क्या कहा था, अन्नावरम में बट्टी कराई थी, इतने थोड़े से ही थे हाथ उठाए जो थे उस समय। अच्छा, जो नहीं थे काकीनाड़ा के, जिन्होंने हमको अन्नावरम में या काकीनाड़ा में नहीं देखा वो हाथ उठाए। अच्छा, थोड़े से ही है। अच्छा, बाकी बीदर वाली हमारी प्रतिभा बहन तो बहुत कहती रहती है, अभी तक मौका नहीं मिला है बीदर में आने का, लेकिन जरूर एक दिन होगा। पर फिर भी आप सभी यहाँ आए तो बहुत खुशी हुई। तो हम देखते हैं सेवा केंद्रों पर भी हमारी बहनें बहुत मेहनत करती है, बहुत पुरुषार्थ करती है, भाई बहनों को भी बहुत पुरुषार्थ करवाती है, कैसे बाबा की एक एक श्रीमत का हर बच्चा पालन करे इस पर भी पूरा ध्यान देती है। तो यहाँ तो आपको इसके लिए बहुत सहज मौका है, तो ये जरूर आप यहाँ लक्ष्य रखेंगे और जो छोटी छोटी कमजोरियां कमियां हैं उन सब को यहाँ खत्म करने के लिए लक्ष्य रखेंगे। ये मानो आपका पीस पीरियड है, जैसे युद्ध के मैदान में जाते हैं ना योद्धा, तो उसके जाने से पहले कई ऐसे स्थानों पर जाते जहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है। माउंट आबू वो स्थान है, या CRPF, या आर्मी एयरफोर्स, यहाँ के यहाँ पर माउंट आबू में ट्रेनिंग लेते हैं, उनका 3 मास का ट्रेनिंग पीरियड होता है यहाँ, और खास करके कैसे युद्ध में गोली चलानी है, रात को भी गोली चलानी है, वो भी सब ट्रेनिंग लेते हैं यहाँ। तो यहाँ कभी आपको रात को ठा 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 बंदूक की आवाज सुनाई दे ना तो घबराना नहीं, क्योंकि वो CRPF वाले या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले या पुलिस वाले जो भी यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और रात को आर्मी वाले भी ट्रेनिंग ले रहे तो रात को आवाज होती है, तो पर घबराना नहीं है, ऐसे नहीं सोचना पता नहीं है क्यों ऐसे हो रहा है, तो इसीलिए ये होता रहता है। लेकिन इनसे हमने ये शिक्षा ली है कि यहाँ वो ये ट्रेनिंग ऐसी लेते हैं ताकि युद्ध के मैदान में जब जाएंगे तो ट्रेंड होकर के जाएंगे और दुश्मनों का सामना सहज कर सकेंगे। सवेरे सवेरे वो एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं, सारे माउंट आबू की पांडव भवन से भी क्रॉस करते हैं, ज्ञान सरोवर तक चारों ओर दौड़ लगाते हैं सुबह सुबह के समय। तो शारीरिक एक्सरसाइज तो करते ही हैं, परंतु यहाँ हमारी मानसिक एक्सरसाइज है। और सवेरे भी 6 से 6:30 बजे यहाँ बाल उद्यान है, वहाँ थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी एक भाई कराता है, अगर कोई जा सके तो जाना चाहे जा सकते हैं, क्योंकि 21 जून आ रहा है ना, अभी ज्यादा दिन नहीं है 21 जून में, तो 21 मई से 21 जून तक एक महीने तक गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को यह सर्कुलर आया है कि ऐसे कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस सभी कराए, और वो आयुष जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की उसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है, तो काफी ज्ञान सरोवर में भी ये होता है, शांति वन में भी ये करते हैं, और 21 जून को तो बहुत बड़े रूप से होगा ही, कोई तो एक हफ्ते तक भी करते रहते हैं। परंतु हमारी तो कौन सी एक्सरसाइज है, मानसिक एक्सरसाइज, मन से 5 स्वरूपों को अनुभव करना, ये भी एक एक्सरसाइज है। एक सेकंड में परम धाम, फिर दूसरे सेकंड में सतयुग में पहुंच जाओ, तीसरे सेकंड में पूज्य स्वरूप द्वापर कलयुग में पूज्य स्वरूप में आ जाओ, फिर संगम पर ब्राह्मण बन जाओ, फिर फरिश्ता बन जाओ, और फिर वापस परम धाम जाओ। ये हमारी एक्सरसाइज है, मन की एक्सरसाइज। तो वो मन की एक्सरसाइज आप 1 मिनट के लिए अवश्य कर सकते हैं, हर घंटे घंटे 1 मिनट का भी गीत बजता है, शांति का गीत बजता है, तो उसमें आप ये 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज हर घंटे घंटे करना। और फिर ट्रैफिक कंट्रोल का भी गीत बजता है तो उसमें भी हमारी ड्रिल चलती रहे, कैसे बाबा के पास गए, फिर सूक्ष्म वतन में गए, फिर साकारी वतन में आए, तीनों लोकों की सैर की, ये आप 3 मिनट के लिए भी कर सकते हैं रोज। और दूसरा बाबा के 4 धाम जो केवल मधुबन में ही है उनका बहुत सुंदर रूप से अनुभव कर सकते हैं। शिव बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है, तो सर्व संबंधों का अनुभव हम मधुबन में कर सकते हैं बाप दादा के साथ। 4 धाम पता है ना, हाँ, कौन से 4 धाम, बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, ये 4 धाम ब्रह्मा बाबा के हैं। तो इन 4 धामों में आप बाप दादा के साथ बहुत सुंदर अनुभव कर सकते हैं। जब बाबा के कमरे में जाएंगे, क्योंकि रोज आपके लिए ये प्रोग्राम है 4 धामों की यात्रा करना, तो बाबा के कमरे में जब जाएंगे तो बाबा को क्या अनुभव करेंगे, माता पिता के रूप में। बाबा की गोद में हम जाते थे, जब बाबा के कमरे में जाते थे वो भी एक सुखद अनुभव था, कैसे बाबा के सामने बैठते थे, बाबा नीचे गद्दी पर बैठते थे और रूप पूरा बाबा के सामने बैठता था, और बाबा एक एक को दृष्टि देते थे, एक एक को बाबा कैसे गोद में लेते थे, एक एक को गिट्टी खिलाते थे, टोली देते थे, वरदान देते थे। तो जैसे अव्यक्त बाप दादा से भी हमने ये अनुभव किया, तो साकार से तो किया ही। तो बाप दादा के कमरे में आप जाएंगे तो अनुभव करना मात पिता बाप दादा का संबंध, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के संग। और जैसे छोटा बच्चा हो जाता है ना, कैसे माँ की गोद में चला जाता है, पिता की गोद में चला जाता है, ऐसा अनुभव करना, छोटा बच्चा बन जाना। छोटा बच्चा माना बिल्कुल निर्दोष, एकदम शुद्ध पवित्र पौड़ा। तो ऐसा अनुभव बाबा के कमरे में करना, ये हुआ माता पिता का अनुभव। फिर हिस्ट्री हॉल में जाएंगे तो बाप दादा को, माता पिता को टीचर के रूप में अनुभव करना, ज्ञान का मनन चिंतन करना हिस्ट्री हॉल में बैठ के, क्योंकि हिस्ट्री हॉल की का जो संदल है, संदली जो जहाँ बाबा बैठते थे, इसी स्थान पर बाबा ने बैठ करके मुरली चलाई है, उसको बदली नहीं किया है, बहुत पुरानी हो गई ये संदली। सारे चित्र जो है, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, ये सब बहुत पुराने हो गए हैं। काफी लोग कहते ये सब चेंज करो, लेकिन दादी जी ने छुट्टी नहीं दी, नहीं ये बाबा के समय के हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। तो और इसीलिए बाबा इसी संदली पर बैठ करके मुरली चलाते थे, एक तरफ बाबा एक तरफ मामा। और बाबा मामा के दिनों में तो बीच में भी एक संदली होती थी, जहाँ पर कोई बहन योग कराती थी जब तक मामा बाबा आए, तो या भाषण बाबा करवाते थे, तो बीच की संदली बच्चों के लिए थी और मात पिता दोनों संदलियों पर। तो बाबा कैसे पलथी मार कर बैठते थे, और यहाँ तो है ना ऐसे, जैसे देख रहे हैं ना पीछे, बाबा ऐसे बैठते थे उस संदली पर भी, बिल्कुल एक्यूरेट, एकदम सीधा, सीधी पीठ करके बाबा बैठते थे, ये अर्ध पद्मासन है। पर ये बहुत रॉयल तरीका, जैसे राजाओं का बैठने का स्वरूप है, तो ऐसे बाबा बैठते थे संदली पर और मुरली चलाते थे। हो सकता है उस समय कोई बहुत ज्यादा भाई बहन नहीं थे, और कभी तो केवल मधुबन निवासी भाई बहने होते थे, वो भी 15-20 ही थे होते थे, लेकिन बाबा की मुरली ऐसी चलती थी जैसे बाबा के सामने बहुत सारे भाई बहने हैं। बाबा इतनी बुलंद आवाज से मुरली चलाते थे, तो बाबा से पूछते थे, बाबा आपने कैसी इतना बुलंद आवाज से मुरली चलाई, लेकिन भाई बहने तो 15-20 ही बैठे थे। तो बाबा कहते थे, बच्चे मैं केवल इनको देख के मुरली नहीं चलाता हूँ, बाबा के पास बहुत बच्चे आने वाले हैं, बहुत बच्चे आएंगे, तो उन बच्चों को भी बाबा देख रहे हैं, वो बच्चे आएंगे और बाबा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेंगे, तो बाबा उनको भी देख करके मुरली चला रहे हैं। तो मानो बाबा के आगे वो भविष्य में आने वाले बच्चे भी दिखाई देते थे, तभी बाबा इतनी पावरफुल मुरली चलाते थे। तो इसलिए जब आप हिस्ट्री हॉल में बैठे तो क्या अनुभव करें, बाबा टीचर के रूप में मेरे सामने बैठा है और टीचर बन करके मुझे पढ़ा रहा है, तीनों कालों का ज्ञान दे रहा है, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहा है, रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान दे रहा है, सारे शास्त्रों वेदों का सार दे रहा है, और वो मनन चिंतन, जैसे तीसरा नेत्र आपका खुल जाए, तीनों काल आपके सामने स्पष्ट हो जाए। और वैसे ही हिस्ट्री हॉल है, बाबा की सारी यज्ञ की हिस्ट्री के फोटोज हैं, तो आप आदि में भी चले जाओ, कैसे बाबा ने यज्ञ की स्थापना की, किस प्रकार ये यज्ञ इतना आज बढ़ चुका है, इतना देश विदेश में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स ये बना है और इसकी ब्रांचेस सारे विश्व में हैं, तो एक नशा चढ़ जाए हिस्ट्री हॉल में बैठ करके, बाबा के कमरे में बैठकर बच्चा बन जाओ, लेकिन हिस्ट्री हॉल में बैठ करके खूब नशा चढ़ाओ और अनुभव करो कि मैं किसका स्टूडेंट हूँ। आज कोई एक छोटा मोटा नामी ग्रामी कोई प्रोफेसर होता है मान लो, उसका स्टूडेंट जो होगा ना, उसको भी बड़ा नशा होगा कि मैं किसका स्टूडेंट हूँ। मुझे याद है एक व्यक्ति आया था, वो अपना अनुभव सुनाता था कि मेरा जो प्रोफेसर थे, पीएचडी किया था उसने कहा मेरा जो प्रोफेसर था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, जो राष्ट्रपति भारत का बना, वो बहुत बड़ा लर्निड स्कॉलर था। आप वैसे प्रोफेसर था, डॉक्टरेट डिग्री तो थी, लेकिन औरों को भी दिलाता था, भारत का राष्ट्रपति था, तो वो प्रोफेसर था मेरा, तो हर एक को ये बताता था मेरा प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, मतलब इतना नशा। और हमारा प्रोफेसर कौन है, हमारा टीचर कौन है, स्वयं भगवान, स्वयं भगवान परम शिक्षक बन करके हमको पढ़ा रहे हैं, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितना नशा, बाबा के कमरे में बैठो तो भी नशा चढ़ाओ। हमारा वो बाप है जिसको सारी दुनिया याद करती है, वो हमारा बाप है, तो नशा चढ़ेगा, और टीचर का नशा हिस्ट्री हॉल में चढ़ेगा। फिर आप शांति स्तंभ पर जाएंगे तो वैसे तो पहले जब साकार बाबा थे तो वो जो स्थान था वो बाबा का प्लेग्राउंड था, बाबा वहाँ क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, वॉकिंग करते थे, वो खुला था, पीछे कुछ था नहीं। ट्रेनिंग सेंटर भी लास्ट में बना था 68 में, उसके पहले वो कुछ नहीं था। दादी जान की अपना अनुभव सुनाती है कि कैसे बाबा के साथ वो वहाँ सैर कर रही थी शांति स्तंभ के एरिया में, तो एक तो बाबा ने उनको कहा कि देखो बच्ची, मैं यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनवा रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैं यहाँ इंद्रप्रस्थ बनाऊंगा, जहाँ दादी जानकी रहती है ना, इंद्रप्रस्थ उसका नाम है, तुम्हारे लिए मैं इंद्रप्रस्थ बनाऊंगा और तुम यहाँ रह करके ट्रेनिंग देना, टीचर्स की ट्रेनिंग आप कराना। तो बाबा उस समय उनको कहते थे, तो देखो बाबा के अव्यक्त होने के बाद टीचर्स ट्रेनिंग वहाँ होती थी, और मुझे ये नशा है कि उस पहली टीचर्स ट्रेनिंग में हम थे 1969 में बाबा के अव्यक्त होने के बाद, तो वो ट्रेनिंग हमारी दादी जानकी जी ने कराई थी, तो इसीलिए उस समय तो बाबा कैसे वहाँ विचरण करते थे ये। और दूसरा, बाबा के पार्थिव शरीर का वहाँ अंतिम संस्कार हुआ, वो समाधि स्थल भी बनाए, लेकिन हम इसमें क्या अनुभव करेंगे शांति स्तंभ पर बैठकर, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डियां गलाई, सेवा में गलाई, ऐसे कहेंगे ना, अंतिम श्वास तक भी बाबा ने सेवा की, अंतिम दिन 18 जनवरी के दिन भी बाबा ने शाम को मुरली चलाई, मुरली चला करके वापस जब कमरे में आए और कैसे वो खेल हुआ, दादी जी सामने थे और दृष्टि और हाथ द्वारा सारी विल दादी जी को कर दी, मानो विल पावर्स दे दिए दादी प्रकाशमणि जी को। तो लेकिन वो शांति स्तंभ हमें याद दिलाता है कि शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा सारे विश्व को क्या संदेश दिया, क्योंकि शांति स्तंभ पर जो लिखत है ना वो इसी अनुसार है। बाबा के अव्यक्त होने से 6 महीने पहले से बाबा की मुरलियों में आता रहा, बच्चे तुम्हें शांति स्तंभ बनना है, और शांति स्तंभ बन करके सारे विश्व को शांति के वाइब्रेशन देने हैं, जैसे वो लाइट हाउस होता है ना, चारों ओर लाइट फैलाता है, प्रकाश स्तंभ कहलाता है, तो वो प्रकाश फैलाता है और आपको शांति स्तंभ बनना है। कभी बाबा कहते थे ज्ञान स्तंभ बनना है, शक्ति स्तंभ बनना है, पवित्रता स्तंभ बनना है, एक एक गुण के लिए बाबा स्तंभ शब्द यूज करते थे, तो जैसे पिलर, और वो लाइट देनी है, शांति देनी है, शक्ति देनी है, पवित्रता देनी है, तो ये बाबा कहते रहते थे। और बाबा कैसे संपूर्णता को प्राप्त होते गए वो भी बाबा का अनुभव किया। बच्चे एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन बाबा आपके साथ है, तो कई समझते थे कैसे बाबा हमारे साथ है, शुरू से का बाबा आपके साथ है, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, तो साथ समझा कि बाबा साकार में हमेशा हमारे साथ रहेगा, यही कईयों ने सोचा, लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि बाबा का अव्यक्त पार्ट भी चलेगा, ये तो किसी को पता नहीं था। हालांकि ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता था फरिश्ते रूप का, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप है, लेकिन ये संपूर्ण स्वरूप फिर कैसे बाप दादा गुलजार दादी के तन में आएंगे और वाणी चलाएंगे? इतने सालों तक बाबा की मुरलियां, अव्यक्त मुरलियां चली है, ये तो किसी को भी अंदाजा नहीं था पहले। लेकिन जैसे बाबा अव्यक्त हुए, ब्रह्मा बाप शिव बाप समान बने, बाप दादा कंबाइंड स्वरूप में अव्यक्त रूप में आए, तो कैसे दिन दुगनी रात चौगनी गति से बाबा की सेवाएं बढ़ी। क्योंकि यही पहली मुरली में बाबा ने कहा, अभी तक तो सेवा चीटी मार्ग की थी, अभी सेवा विहंग मार्ग की होगी, जैसे पक्षी कैसे उड़ता है वैसी सेवा होगी। अभी तक तो चीटी की चाल जितनी सेवा थी, और बाबा ने यहाँ तक भी कितनी मुरलियों में कहा है कि ब्रह्मा बाबा को साकार में प्रत्यक्ष नहीं होना था, इसलिए ब्रह्मा बाबा गुप्त ही रहे, सदा गुप्त ही रहे। मम्मा तो और भी गुप्त रही, वैसे भी सरस्वती नदी गुप्त दिखाते हैं, मम्मा तो और भी गुप्त रही, पर ब्रह्मा बाबा भी साकार में गुप्त रहे। कभी बाबा बड़ी सभाओं में भाषण नहीं करते थे, क्योंकि बाबा कहते थे शिव बाबा तो अपने बच्चों के सामने ही वाणी चलाते, तो बाबा के सामने केवल बाबा के बच्चे ही बैठते थे और कोई नहीं बैठ सकता था। कल भी बाबा ने मुरली में कहा, जिन्होंने जिनको ज्ञान नहीं है वो बाबा की मुरली में कभी नहीं बिठाना, बाबा किसी से मिलते भी नहीं थे। बाबा कहते थे बच्चे इनको कहाँ पहचानेंगे, शिव बाबा इनके तन में आते हैं कहाँ पहचानेंगे, इसलिए बाबा नहीं मिलेंगे, पहले इनको कोर्स कराओ, इनको समझाओ कि ये कौन है, कैसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है जिसमें शिव बाबा आते हैं, ये पहले समझाओ फिर बाबा के पास ले आओ। ऐसे बाबा किसी से मिलते नहीं थे। तो देखो बाबा कैसे गुप्त रहे, लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने कैसे शक्तियों को आगे किया, और शक्तियों को क्या कहा, अब यही शक्तियां शिव को प्रत्यक्ष करेगी, शिव को प्रत्यक्ष करने वाली ये शक्तियां बाप दादा बैकबोन बन जाएंगे, और ये शक्तियां सारे विश्व में बाबा का नाम रोशन करेंगी। तो वही देख रहे हैं, लोग तो बाप दादा को नहीं जानते, लेकिन बहनों की महिमा करते, तो शक्तियों की महिमा है, पर शक्तियों की महिमा माना इनडायरेक्टली किसकी महिमा है, शिव बाबा की महिमा है। तो इसीलिए शांति स्तंभ माना जहां बाप दादा ने हमें वो प्रेरणा दी कि हमें भी शांति स्तंभ बनना है, शक्ति स्तंभ बनना है, प्रकाश स्तंभ बनना है, पवित्रता स्तंभ बनना है। तो शांति स्तंभ पर बैठ करके ये अनुभव करो, अपने संपूर्ण स्वरूप का अनुभव करो। मैं आत्मा भी सूक्ष्म वतन में ऐसे फरिश्ता स्वरूप हूँ, और मुझे ये शरीर की हड्डियां भी बाबा की सेवा में गलानी है, तन मन धन सब बाबा का अनुभव करना है, ट्रस्टी होके रहना है। तो जैसे बाबा से प्रतिज्ञाएं करते हैं, और सतगुरु का रूप है, तो सतगुरु के सामने जब जाते हैं तो सतगुरु की आज्ञा कहते माने माथे, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। तो सतगुरु का अनुभव हम शिव बाबा से करेंगे, बाप दादा से करेंगे शांति स्तंभ पर। और चौथा बाबा की झोपड़ी, तो बाबा की झोपड़ी में तो ज्यादा नहीं बैठ सकते थे, एक दो ही बैठते थे बाबा के सामने। जिसको बाबा से पर्सनल मुलाकात करनी होती थी वो दिन के समय 11 बजे बाबा के झोपड़ी में बैठते थे, और वो उन दिनों में बाबा जो झोपड़ी बनवाते थे बहुत सिंपल, हर साल बनवाते थे, यहाँ खजूर के पेड़ बहुत है, तो खजूर के पेड़ के जो हरे हरे पत्ते थे वो मिल जाते थे, और उनसे बाबा झोपड़ी बनवाते थे। तो गर्मी के दिनों में भी वहाँ बहुत अच्छी ठंडक होती थी अंदर, और बाबा गर्मी के दिनों में बाबा बनवाते थे, और बाबा 11 से 12 एक घंटा वहाँ बैठते थे झोपड़ी में, और एक एक बच्चे से इंडिविजुअल कुछ बात करनी हो, कुछ समस्या हो उनकी, कोई भी प्रॉब्लम उस का बाबा सुनते थे और हल देते थे, मानो जैसे सखा का रूप, जैसे सखा होता है ना, फ्रेंड होता है, मित्र होता है, तो खुदा दोस्त के रूप में बाबा को झोपड़ी में अनुभव करो। रोज आपको पत्र लिखने लिए दिया जाएगा, कभी बाबा को पिता रूप में, कभी टीचर रूप में, कभी खुदा दोस्त रूप में, कभी धर्मराज रूप में, हाँ, कैसे बाबा को लिखो पत्र। तो झोपड़ी में बाबा को मित्र रूप में देखो, जो अंदर की बात है, कुछ भी बात है, चाहे कमी कमजोरी, चाहे कुछ भी, चाहे प्रॉब्लम, कुछ भी हो, वो बाबा को दे दो, लिख करके भी बाबा के लेटर बॉक्स है उसमें डाल दो। मैं आपको निश्चय से कहती हूँ कि सचमुच बाबा सुनता है, और कैसे अगले दिन कुछ न कुछ रूप से उसका जवाब आपको मिल जाएगा, चाहे मुरली से मिल जाएगा, चाहे किसी के द्वारा मिल जाएगा, और जैसे बाबा वो समस्या हल कर देगा। बस बाबा को देखे देखो, वो प्रॉब्लम खुद को पकड़ के मत रखो, खुद में नहीं पकड़ के रखो, बाबा को दे दो। कई भाई बहने अपना अनुभव सुनाते हैं, हम यहाँ तो आए हैं लेकिन घर की ये चिंता है, वो चिंता है, क्या होगा, कैसे होगा, ये क्या होगा, तो बाबा कहते हैं अभी चिंता मत करो, यहाँ से इतनी शक्ति भर के जाओ, बाबा को वो प्रॉब्लम दे दो, बाबा को कहो बाबा ये आपको सॉल्व करना है, आपको इसका समाधान करना है, और आप हल्के हो जाओ, बस बाबा जाने, बाबा का काम जाने, आप मत सोचो मुझे करना है, होल्ड मत करो, बाबा को दे दो, और देखो आप अनुभव करेंगे जब आप वापस जाएंगे, वो समस्या कैसे चली गई पता भी नहीं चलेगा आपको, क्योंकि बाबा ने उसको सॉल्व कर दिया, उसका हल कर दिया। पर बाबा को देखे देखो, ये बाबा की झोपड़ी में कर सकते हो, आराम से बैठ करके बाबा को पत्र लिखो, और पत्र में ये सब अपनी प्रॉब्लम्स भी लिखो, और बाबा के लेटर बॉक्स में डाल दो, वहाँ है ना, झोपड़ी में भी है, बाबा के कमरे में भी है, और कहाँ भी बैठ के लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ डाल दो, और अनुभव करेंगे आप एकदम हल्के हो गए। तो यहाँ से आपको बदल के जाना है, योग की अग्नि प्रज्वलित करनी है, बाबा आजकल कहते हैं ना ज्वालामुखी योग, तो ज्वालामुखी योग माना एकदम अशरीरी अवस्था, देही अभिमानी तो चलते फिरते खाते पीते हो सकते हैं, लेकिन जब योग में बैठते हैं तो बिल्कुल अशरीरी अवस्था का अनुभव करो, जैसे ये देह से मैं आत्मा एकदम उपराम हूँ, सूक्ष्म फरिश्ता बन गई, आत्मा उड़ के वतन में पहुंच गई, बाप दादा के संग सारे विश्व का भी भ्रमण करके आओ, बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो अपनी तपस्या के अनुभव में, और उस तपस्या के बलबूते पर एक परिवर्तन अपने अंदर लाओ, दृढ़ संकल्प करो अंदर ही अंदर, बहुत कुछ कर सकते हैं इस योग तपस्या में, और इस तपस्या के फल स्वरूप एक परिवर्तन लाओ। अग्नि का काम ही है परिवर्तन करना, पहले अपनी कमजोरियों की लिस्ट निकालो, ये मेरे अंदर कमजोरी है, ये मुझे खत्म करनी है, ये मुझे नष्ट करनी है, ये कमी भरनी है, ये बाबा को दान देना है, ये जो भी बोझ है ये बाबा को दे करके हल्का बनना है, तो एक संकल्प भी साथ साथ करते रहो, और देखो आप महसूस करेंगे कि 3 दिन के बाद आप बिल्कुल बदल जाएंगे, आपको विश्वास से कह सकते हैं, इतना सुंदर अनुभव होगा। और हमारे कई अनुभवी भाई बहनों की आप क्लासेस सुनेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे, बाबा मम्मा की बातें सुनेंगे, तो आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि जैसे हम बाबा मम्मा के कितने नजदीक आ गए। तो मधुबन तपोभूमि है, वरदान भूमि है, परिवर्तन भूमि है, यहाँ से खूब वरदान लेके जाओ, रोज का आपको मिलेगा स्वमान मिलेगा, रोज का स्वमान जो आपको मिले वो स्वमान को सारे दिन में अनुभव करना है। मैं मास्टर मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, कितना बड़ा स्वमान है। तो चलो फिरो, सारे विश्व का मैं कल्याण कर रहा हूँ, सारे विश्व के लिए मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ, सारी दुनिया का मुझे परिवर्तन करना है। तो एकदम जैसे विश्व के ग्लोब पर बैठ करके विश्व को सकाश दे रहे हैं। तो जो आपको सवेरे स्वमान मिले वो सारा दिन उस स्वमान के अनुसार अनुभव करना, और फिर लास्ट में आपका अनुभव की लेन देन भी रखते हैं। हर एक अपना अनुभव भी बताए कि कौन ऐसे होंगे जो बिल्कुल 3 दिन एकदम मौन में रहे। हाँ, वो भी 3 दिन के बाद भी पूछना तृप्ति बहन किसने एकदम मौन रखा, क्योंकि फेल हो जाते हैं। हाँ, पता है। कई बार हम पूछते हैं मौन में रहना सहज है या आवाज में आना सहज है, कौन सा सहज है? मौन में रहना सहज है, सच्ची नहीं? भाई लोग बताए कौन सा सहज है, मौन में आवाज में? जो समझते आवाज में आना सहज है वो हाथ उठाए। अच्छा, इतने थोड़े? जो समझते मौन में रहना सहज है वो हाथ उठाए। अच्छा, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर मौन में रहना सहज है तो सहज काम तो जो है तो होना चाहिए ना। फिर ये तो नहीं कहेंगे नहीं मैं तो फेल हो गया। हाँ, फेल हो गया, मौन में नहीं रह सका, क्योंकि द्वापर कलयुग से तो बहुत आवाज में आए। जैसे कई भाई बहने कहते हैं ना, क्या करे पुराने संस्कार है, तो परंतु बाबा कहते हैं पुराने संस्कार तो द्वापर कलयुग के आप है, आपके हैं। असली संस्कार जो अनादि और आदि संस्कार है वो तो बहुत ही श्रेष्ठ है, तो वो संस्कारों का अनुभव करो। परम धाम में आत्मा कैसे एकदम साइलेंस में है, वहां तो शरीर ही नहीं है, वहां पर तो वैसे ही मौन में होंगे। तो अगर परम धाम की स्थिति का अनुभव कर सकेंगे तो मौन में रहना सहज होगा। पर साकारी दुनिया टॉकी की दुनिया है, आवाज की दुनिया है। उस आवाज की दुनिया में अगर आप आएंगे तो जरूर फिर हलचल होगी, परंतु हलचल से परे इस टॉकी दुनिया में भी रहकर अनुभव करे अचल स्थिति का, ये है सचमुच सफलता। और ये 3 दिन आप ये अनुभव यहाँ कर सकते हो। तो मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बाबा का प्यार बच्चों को मिलता रहता है, वो प्यार अनुभव करते, दादियों की आशीर्वाद लेते, दुआएं लेते ये अनुभव आप सभी करें, ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी आ रही? वो देखो दादी जी आ गए हैं।